मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज नवंबर सन 2017 का आखिरी दिन है, यानी कि 31 नवंबर 2017, और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आपसे याद आने और भूलने के धूप छावी खेल के बारे में कुछ बातें कर रहा था। मुझे नहीं मालूम कि वो बातें आप लोगों को कितनी पसंद आई होंगी, कितनी नहीं आई होंगी। फिर मुझे लगा कि आज मुझे थोड़ी बातें स्मरण शक्ति के बारे में भी कर देनी चाहिए, उसी के कंटिन्यूएशन में। उसका कारण यह है फ्रेंड्स कि मेरे पास बहुत से आप सब प्रिय श्रोताओं के मेल आते हैं, और खासकर मेल पढ़ने के बाद साफ पता लग जाता है कि ये स्टूडेंट्स के मेल हैं जो अभी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं और इस बात से बहुत परेशान हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेमोरी पावर बहुत कमजोर है, वो याद करते हैं, कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं या थोड़ी देर के बाद ही भूल जाते हैं, और इसको लेकर के वो बेहद परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो कुछ तो कहते हैं कि सर क्या हम ये दवाई खाना शुरू कर दें, कुछ जो भी वो दूसरों के पास जाते होंगे अपनी समस्याएं लेकर के, और हम हिंदुस्तानी इस मामले में तो कम से कम बहुत होशियार हैं, बहुत चालाक हैं, या कह लीजिए बहुत कुछ जरूरत से ज्यादा ही समझदार हैं कि हम किसी को ना नहीं कहते, हम उसे कुछ ना कुछ उपाय बता ही देते हैं। तो लोग उपाय भी बता देते हैं और वो उपाय करने लगते हैं, लेकिन बात बनती नहीं है, फिर वो निराश होते हैं। तो इसी आपाधापी में कि कैसे वो अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाएं, अपनी ढेर सारी शक्ति खोते रहते हैं, स्मरण नहीं शारीरिक शक्ति खोते रहते हैं और समय की शक्ति को भी खोते रहते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, कल हम लोगों ने याद आने और भुलाने पर कुछ बातें की हैं, तो क्यों नहीं उसी सिलसिले को आज के भी लाइफ मैनेजमेंट में आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, इसी के बारे में मैं कुछ बहुत ही व्यावहारिक किस्म की आपसे बातें करने जा रहा हूं। नो डाउट कि ये व्यावहारिक किस्म की जरूर है, लेकिन अवैज्ञानिक नहीं है, ये वैज्ञानिक भी है, लेकिन मैं उसके ऑर्गन्स की बात नहीं कर रहा हूं। ऑर्गन्स तो आप समझते हैं कि जो हमारी स्मरण शक्ति है, तो हमारे दिमाग में ब्रेन है ना, ब्रेन नामक एक ऑर्गन है, एक शरीर का एक हिस्सा है, एक अंग है। मैं उस अंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि आप इस अंग को कैसे करेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, मैं तो उसका जो सॉफ्टवेयर है आप कह लीजिए, मैं उसके बारे में बातें कर रहा हूं। और सच पूछे तो मैं बहुत वो सामान्य तरीके की बातें करने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि जिसको अगर अपनाया जाए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में लाया जाए, तो ये जो समस्या है, ये जो शिकायत है, इसका थोड़ा बहुत हल निकाला जा सकता है। थोड़ा बहुत क्या, अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा खासा हल इसका निकल आएगा, मतलब कम से कम शिकायत तो नहीं ही रह जाएगी। दोस्तों, मैं एक बात तो आप लोगों को बता दूं जो बहुत लोगों ने मुझे भी बताया है, और मैं अब इस बात पर काफी कुछ यकीन भी करने लगा हूं कि ये जो स्मरण शक्ति होती है, ये मूलतः जन्मजात क्षमता नहीं है। देखिए, कुछ लोगों में तो अद्भुत चीजें होती हैं, अब पता नहीं अब वो जन्मजात है नहीं है क्या है, सच में आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है, तो कहते हैं ये गॉड गिफ्टेड है। ऐसे लोगों को हम किनारे कर देते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को तो हमें अपवाद मान लेना चाहिए। हालांकि इस बात के भी प्रमाण है कि जो इतनी अद्भुत स्मरण शक्ति से संपन्न लोग थे, बचपन में उन्होंने जो अपनी अद्भुत क्षमता दिखाई, आगे जाकर के कुछ बड़ा काम नहीं कर पाए वो, और इनके बकायदे इतिहास हैं। और जो बचपन में सामान्य तरीके के थे, जो कह लीजिए भुलक्कड़ टाइप के ही थे, आगे जाकर के बहुत महान बन गए, जिसमें आइंस्टीन जैसे लोग थे, थॉमस अल्वा एडिसन जैसे लोग थे, ये सब पढ़ने में बहुत ही निखट्टू थे। अब आज इनका नाम आप सोच करके देखिए, इन्होंने पूरी दुनिया बदल दी, आने वाली दुनिया को बदल दिया। तो ये कि स्मरण शक्ति, पहली बात तो यह कि ये कहना कि स्मरण शक्ति ही हमारी सफलता का आधार होगी, अपने आप में गलत तथ्य है। स्मरण शक्ति एक क्षमता जरूर है, एक अच्छी बात है, अगर हम किसी चीज को लंबे समय तक याद रख पाते हैं तो एक बेहतर ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतनी बड़ी चीज है कि अगर यह मुझे मिल गई तो फिर तो मैं दुनिया में कुछ भी कर ले जाऊंगा। नॉट एट ऑल मित्रों, जो क्रिएटिविटी होती है, जो रचनात्मकता होती है, वो बिल्कुल अलग चीज है, उसका स्मरण शक्ति से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। थोड़ी सी चीजें पता हो फिर तो आप रचते हैं ना, रचते हैं, और रचने में आपको कल्पना शक्ति की जरूरत पड़ती है, और कल्पना शक्ति का स्मरण शक्ति से कोई सीधा संबंध नहीं होता है, है ना। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप ये मानते हैं कि आप में इसकी थोड़ी सी कमी है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको ऐसा लगता है तो फिर मैं कुछ बातें आपको अभी बताने जा रहा हूं, उससे आप उस स्तर तक तो पहुंच सकेंगे। मुझे लगता है कि आप फिर एक तरह का आत्मविश्वास हासिल कर लेंगे कि नहीं, अब तो मैं काम चला सकता हूं, इतनी स्मरण शक्ति मेरी हो गई है, अब मुझे घबराने की जरूरत नहीं है और मैं इसी के दम पर कितनी भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकता हूं। राइट? जैसे हम एग्जामिनेशन की बात लें तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन में हमें नंबर तभी मिलेंगे जब हमारी स्मरण शक्ति बहुत ही ब्रिलियंट होगी। अब आप ये बताइए कि अगर एनालिसिस करने के लिए आ गया, इवेल्युएशन करने के लिए आ गया, तो उसमें तो थोड़े से तथ्य चाहिए बस, इसके बाद सब कुछ तो आपको अपने ढंग से लिखना है। तो वो एक स्मरण शक्ति नहीं चाहिए, वहां क्रिएटिविटी चाहिए, एनालिटिकल पावर चाहिए। और एनालिटिकल पावर, आप ध्यान रखिए, आपके स्मरण शक्ति से नहीं आती है, तथ्य स्मरण शक्ति आपको दे सकती है, लेकिन जो एनालिटिकल पावर है तो वो तो एक डिफरेंट किस्म की क्रिएटिविटी है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, और मैं ये बात भले ही स्टूडेंट को संबोधित करके कह रहा हूं, लेकिन इसे दूसरे श्रोता भी, दूसरे मेरे प्रिय श्रोता जो हैं, वो भी अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, उन्हें इसके लिए मना ही नहीं है। दोस्तों, सबसे पहली बात जो मुझे लगती है कि स्मरण शक्ति हमें अगर लगता है कि कम है, तो हमें इस बात को टटोलना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीज हम भूल जाते हैं वह चीज ऐसी है कि उसमें हमारी रुचि नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। क्या हम सभी चीजों को भूल जाते हैं? मतलब ये अपने आप के बारे में सोचने की बात है। क्या हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, कुछ समय के बाद भूल जाते हैं? पहली बात। या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चीजों को भूल जाते हैं लेकिन कुछ चीजें याद भी रहती हैं? आप देखेंगे कि आप दूसरे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, यानी कि नहीं, सारी चीजों को नहीं भूलते, कुछ चीजों को भूल जाते हैं, कुछ चीजों को भूल जाते हैं, या ज्यादा चीजों को भूल जाते हैं लेकिन कुछ चीजें याद रहती हैं। अब आप देखें कि ये जो चीजें याद रह रही हैं वो कौन सी चीजें हैं, आप खुद उसका मूल्यांकन कीजिए। तो गहराई में जाकर के आप एकदम पकड़ लेंगे कि ये जो याद रहने वाली चीज है वो वह चीज है जिसमें आपका बड़ा इंटरेस्ट है, जिसमें आपको मजा आ रहा है, आपकी रुचि है, वो चीज आपको याद रह रही है। साफ बात है कि फिर आप दूसरे पक्ष पर जाइए जिन्हें आप भूल जाते हैं, तो पाएंगे कि वो चीजें हैं जिसमें आपकी रुचि नहीं है। पढ़ाई में ज्यादातर लोगों को रुचि नहीं होती, तो पढ़ाई की चीजें ही ज्यादा भूलते हैं। और सच पूछे तो जो शिकायत लोग करते हैं कि मैं भूल जाता हूं, उसका संबंध पढ़ाई से ही होता है, क्योंकि पढ़ाई की ज्यादातर चीजें इंटरेस्टिंग नहीं होती है, बोझीली लगती है ना, बोझीली लगती है, वजन लगता है। और वजन इस बारे में भी लगता है कि यार इनको याद रखो, फिर रटो, फिर समझो और फिर परीक्षा में लिख करके आओ, तो बोझ लगता है ना, अनजाने में ही बोझ लगता है। जो बोझ लगेगा उसके प्रति आप बताइए ना कि इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, रुचि। तो देखिए कि पहली बात यह है कि जिन चीजों को भी आप याद रखना चाह रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए, या तो पहले से ही आपका इंटरेस्ट उसमें है, नहीं तो उसमें फिर इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है, भले ही थोड़े समय के लिए क्यों ना हो। जैसे पढ़ाई लिखाई का मामला तो थोड़े समय के लिए होता है, तो थोड़े समय के लिए इंटरेस्ट डेवलप कर लीजिए, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। मित्रों, अगर मैं इंटरेस्ट डेवलप करने के बारे में बात करने लगूंगा तो फिर हमारा जो मुख्य विषय है, मुख्य मुद्दा है, वो छूट जाएगा, इंटरेस्ट। इसके बाद जो दूसरी बात है, आप दोस्तों, मैं एक छोटा सा आपको फिर से एक उदाहरण देता हूं, या यूं कह लीजिए मूल्यांकन का आधार देता हूं, और वो ये कि आपका जितना भी जीवन अभी तक का बीता है, आप जब से भी याद कर पा रहे हो पिछले दिनों से, आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपको कौन कौन सी घटना याद हैं और किन किन घटनाओं को आप भूल चुके हैं। तो भूल चुके हैं तो याद ही नहीं रहेगा, लेकिन आप ऐसी घटनाओं की लिस्ट बना सकते हैं जो आपको याद हैं, और अगर आपको लगता है कि हाँ वो याद हैं और याद होंगी ही, तो फिर अब ये जानने की कोशिश कीजिए, पकड़ने की कोशिश कीजिए कि ये कौन सी घटनाएं हैं जो याद हैं और ये क्यों याद हैं। इसमें क्यों याद हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये याद क्यों है। आप देखिए कि हम लोग की जिंदगी में इतनी सारी घटनाएं घटती हैं, एक ही दिन में कितनी घटनाएं घट जाती हैं, और पता लगा कि उस दिन की कोई घटना हमें याद ही नहीं है, तो ये सोचने की बात है कि वो याद क्यों नहीं है जबकि घटित वो भी हुई है। तो आपको एक दो निष्कर्ष मिलेंगे, आपको एक दो नतीजे मिलेंगे जब आप इस तरह से सोचेंगे। तो पहला तो आप ये निष्कर्ष साथ निकालेंगे कि जिन घटनाओं का हमारी जिंदगी पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है, चाहे पक्ष में पड़ा हो या विपक्ष में पड़ा हो, ये राजनीति का पक्ष विपक्ष नहीं है, यानी कि उसका रोल हमारी जिंदगी में अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो, उन्हें हम भूल नहीं पाते। लेकिन केवल यही बात नहीं है, अब आपको दूसरा जो इसी से जुड़ा हुआ सूत्र है उसे पकड़ना पड़ेगा। हम इन्हें भूल क्यों नहीं पाते, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि किस अगर पत्थर से कोई बहुत एक बहुत बड़े पत्थर को अगर फर्श पर डाल दिया जाए तो उस फर्श में खरोच आ गई है, अब वो खरोच मिटेगी नहीं। तो चूंकि घटना जो बहुत अच्छा जिसका रोल हमारे जीवन में रहा या बहुत बुरा रोल रहा है, तो उसने हमारे ब्रेन में कहीं वो खरोच पैदा कर दी है, तो अब वो मिटेगा नहीं, ऐसा मामला नहीं है। होता यह है कि चाहे हमारी जिंदगी की अच्छी घटना हो या चाहे बुरी घटना हो, जब भी हम अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं ना, तो इन्हीं घटनाओं को दोहराते हैं, मतलब अपनी जिंदगी की कहानियों में हम इन्हीं घटनाओं को बताते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रिवीजन, कि हम लगातार उन्हें रिवाइज करते रहते हैं, और जिन्हें रिवाइज नहीं करते वो गायब हो जाते हैं। याद रखिए, वो खत्म नहीं हुए हैं, वो सिर्फ गायब हुए हैं, वो हमारे दिमाग के अंदर ही हैं, मौजूद हैं, लेकिन चूंकि हम उन्हें रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो वो नीचे दब गए, ऊपर आ ही नहीं पा रहे हैं, और जिन्हें हम रिवाइज करते रहते हैं वो ऊपर आते रहते हैं, वो हमें याद रहते हैं। तो दूसरा जो नियम हुआ मित्रों, वो हो गया दोहराना। पहला हुआ इंटरेस्ट डेवलप करना, और दूसरा हो गया दोहराना, और तीसरा और आखिरी जो मैं बताने जा रहा हूं मित्रों, वो यह है कि ये जो ब्रेन है ये भी एक ऑर्गन है, छोटी सी बात है जो मैं बता रहा हूं। जैसे हमारा हाथ है, अगर हम हाथ का उपयोग न करें तो हाथ कमजोर पड़ जाएगा, पैर का उपयोग न करें तो पैर कमजोर पड़ जाएगा, जिस अंग का भी हम उपयोग कम कर देंगे उसकी जो क्षमता है घटने लगेगी। तो मित्रों, हमें अपने दिमाग का उपयोग भी करते रहना चाहिए। दिमाग का उपयोग करने का मतलब यह नहीं है कि गाल पर हाथ रख करके और हम चिंता कर रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम उसका उपयोग कर रहे हैं। उपयोग करने का मतलब है कि हम हमेशा कुछ न कुछ एक दिन में थोड़ा सा समय निकालें कि सोचें, किसी विषय के ऊपर सोचें, कोई गणित का सवाल हल करें, कुछ उटपटांग कल्पना ही करें, सीधी सीधी कल्पना नहीं, एकदम उटपटांग किस्म की कल्पना करें, उटपटांग किस्म की बातें सोचें। आप देखेंगे कि जब हम उटपटांग चीजें सोचते हैं ना, तब दिमाग को बड़ा जद्दोजहद करना पड़ता है, दिमाग हमारा परेशान हो उठता है। तो अगर हमारा दिमाग इस तरीके से एक रचनात्मक सोच से परेशान हो रहा है, तो आप मान करके चले कि दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है, हमारा दिमाग मजबूत हो रहा है, तो इससे हमारे ब्रेन की टोनिंग अप होगी, वर्कआउट होगा, कह लीजिए दिमाग का वर्कआउट होगा, जैसे आप जिम में जाकर शरीर का वर्कआउट करते हैं, तो ऑर्गन के फॉर्म में इसे मजबूती मिलेगी। तो मित्रों, मैं ये तीन छोटी छोटी बातें आपके सामने रख रहा हूं, मैंने रख दी हैं, आप इनका उपयोग करके देखिए, डेफिनेटली विश्वास कीजिए कि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा परिणाम मिलने में, ये एकदम तुरंत का मामला नहीं है कि स्विच ऑन किया और कमरे में रोशनी फैल गई। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज की लाइफ मैनेजमेंट को यही मैं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।